मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि कल जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे थे उत्तर के मूल्यांकन को लेकर के, उन पर आपने बहुत गंभीरता से विचार किया होगा, सतर्कता से विचार किया होगा, और इसके बाद अपने अंदर यदि इस तरह की कमजोरियों को आपने ढूंढा होगा तो शायद कहीं न कहीं उसके छोटे मोटे टुकड़े मौजूद मिले होंगे। और यदि आपको ऐसा लगा हो तो प्लीज उसे आइडेंटिफाई करके उससे मुक्ति पाने का हर संभव कोशिश करें, उससे आपको मुक्ति पानी ही होगी। एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है कि ये जो स्टूडेंट है किस स्तर का है, विषय की इसको समझ है कि नहीं है, प्रश्न इसकी समझ में आया है या नहीं आया है, और उत्तर लिखना यह जानता है या नहीं जानता है। देखिए, वो इसके एक्सपर्ट हैं। आप तो शुरुआत कर रहे हैं, वे तो अपने यात्रा के अंत पर हैं और यही करते करते वे यहां तक पहुंचे हैं, तो आपको कम से कम उनके अनुभवों पर किसी भी तरह की कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। राइट, आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें विचार और तथ्य ढूंढने की कोशिश करते हैं मध्यकालीन मूर्तिकला के बारे में और उसमें जो सामाजिक जीवन को अभिव्यक्ति मिली है उसके बारे में। ढूंढिए, इत्मीनान से ढूंढिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए, और जहां भी आपको इनके बारे में कोई भी विचार या तथ्य मिलते हैं तो प्लीज आप उसे अंडरलाइन कर दें, वहां एक निशान लगा दें, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हालांकि मैं जानता हूं कि आपके पास राइटिंग फॉर्म में यह आंसर नहीं है, आप चाहे तो राइटिंग फॉर्म में तैयार कर लें, यह आपके ऊपर है, लेकिन मेरी अपनी सीमा है कि मैं राइटिंग फॉर्म में आपको ये आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार नहीं है। कॉपीराइट का भी मामला कहीं ना कहीं तो होता ही है, हम तो एक केवल समीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ढूंढना है कि जो मध्यकालीन मूर्तिकला है, याद रखिए मध्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं भी आपको नहीं ढूंढनी है, यहां भी गड़बड़ होने की संभावना है। अगर थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट होगा तो उसके यहां भटक जाने की आशंका रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्यकालीन मूर्तिकलाओं की वो विशेषता लिखने लगे। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप मध्यकालीन मूर्तिकला की विशेषता लिखेंगे तो उसमें सामाजिक जीवन के कुछ तथ्य आ जाएंगे, कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन और भी बहुत दूसरी चीजें मिलेंगी। और जैसे ही दूसरी चीजें मिलेंगी एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा कि नहीं नहीं, इसको छांटना नहीं आया, ये चीजों को सही तरीके से निकाल करके मेरे सामने नहीं रख सका है, जो भी इसको मालूम था वह इसने परोस दिया है, उसे यह समझने में जरा भी देरी नहीं होगी और वह फिर से आपके इंप्रेशन को खराब कर देगा। यह मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये कि देखिए, जब मूल्यांकन किया जाता है उत्तर का तो उसके दो तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर यह होता है कि नहीं, यह स्टूडेंट अच्छा है और इसका तो इंटरव्यू कॉल आना ही चाहिए। अब कितने मार्क्स मिलेंगे दूसरे में और कितने नंबर लाएगा वो एक अलग बात है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फिर एग्जामिनर एक पैरामीटर उसके दिमाग में रहता है कि अगर उसने प्रश्न अच्छा किया है तो उसे 10 में से 5-6 नंबर तो दे दे, अगर अच्छा किया है तो। ये जनरल स्टडीज की मैं बात बता रहा हूं। और अगर थोड़े से मध्यम श्रेणी का है तो 4 और 5 के बीच में दे दे। अगर ऐसा प्रश्न है जो सही मायने में किताबों में ज्यों का त्यों नहीं मिलता है, जिसके लिए दिमागी कसरत की जरूरत है, अगर उसे ठीक ठाक कर दिया है तो वो भी 4-5 नंबर के करीब वो पहुंच जाएगा। और फिर ऐसे प्रश्न जो बहुत कठिन किस्म के, एग्जामिनर जानता है कि भाई इसका उत्तर आसान नहीं है, अगर उसको उसने अटेम्प्ट कर लिया है तो फिर उसमें दो तीन नंबर वो दे देता है। तो कुल मिलाकर के उसकी कोशिश होती है कि अगर ठीक ठाक स्टूडेंट है तो उसे वो बकायदे जो 250 नंबर का आपका पेपर होता है उसमें 100 तक पहुंचा दे, 90-100 तक वो पहुंचा दे, और इसी के आधार पर वो आपका मूल्यांकन करता है। लेकिन यदि स्टूडेंट उसको लग जाता है कि नहीं ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो शुरू में ही वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो अच्छा नहीं, हालांकि अब बात वो नहीं रह गई, अब तो आपको क्रम से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले है कि आपको जो सबसे अच्छा लग रहा हो आप पहले करिए, इसके बाद वाला करिए, अब ऐसा नहीं रह गया है, तो इसलिए वो पद्धति तो खत्म हो गई है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, लेकिन आपके 1-2 आंसर को पढ़ने के बाद एग्जामिनर के दिमाग में आपका वैल्यूएशन एस्टैब्लिश हो जाता है। और खासकर यदि इस तरह के प्रश्न जो कि बहुत ही स्ट्रेट हैं, सामान्य तौर पर जिसे मैं एक सरल उत्तर भी कहूंगा, अगर उसमें आप गड़बड़ी कर देते हैं तब तो एग्जामिनर के दिमाग में जो आपका इम्प्रेशन होगा वो बहुत खराब हो जाएगा। और दुर्भाग्य ये है कि जो एग्जामिनर है वो जज नहीं है कि किसी कानून की किताब के आधार पर उसे निर्णय देना। हालांकि जजों के ऊपर भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रुचि, अभिरुचि, सब्जेक्टिवनेस का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो यहां जो एग्जामिनर है उसकी अपनी भावनाएं भी हैं, अपने विचार भी हैं, लेकिन वो उनसे ऊपर उठ करके जांचने की कोशिश करता है, तटस्थ रहने का हर संभव प्रयास करता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि साहब वो मैथमेटिक्स के फार्मूले की तरह ही चीजें देखेगा कि दो और दो तो चार ही होते हैं। तो अगर इम्प्रेशन खराब पड़ गया तो मानकर चलिए कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको चीजें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ही नहीं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर मिलेंगी भी तो इधर उधर बिखरी हुई मिलेंगी, उन सबको आपको एक जगह छांट छांट कर इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब आप छांट छांट कर उन्हें इकट्ठा भी कर लेंगे तो इकट्ठा करने के बाद जो चेहरा बनेगा वो चेहरा भी एक कंप्लीट आंसर, जिसे कहते हैं, एक संपूर्ण उत्तर का चेहरा नहीं बनेगा। एक तो वो कटा फटा होगा ही, उसमें तारतम्यता नहीं होगी, भाषा का वो प्रवाह आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो टूटी फूटी इधर उधर से चीजें इकट्ठी की हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से जुड़ाव कैसे होगा। विचार उसमें आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि टूटी फूटी चीजों में विचार नहीं आते हैं, है ना। तथ्य तो एक अलग अलग फूल की तरह होते हैं और जो विचार होता है वो एक धागे की तरह होता है। आप एक विचार के धागे में उन तथ्यों के फूल को पिरोते हैं और उससे एक खूबसूरत माला तैयार हो जाती है। एक अच्छे आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बुनावट होती है, वो लगभग लगभग इसी तरह की होती है। और जब एग्जामिनर इस तरह के बुनावट के उत्तर को पढ़ता है तो डेफिनेटली उससे प्रभावित होता है, उसको अच्छा लगता है। याद रखिए कि एग्जामिनर आपका दुश्मन नहीं है। अगर आप उसे खुश करते हैं तो वो खुश होता है और वो उसका रिवार्ड देता है आपको। और खुश करने का एकमात्र तरीका है कि आपके विचार उसे पसंद आ रहे हैं। पसंद में उसकी अपनी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, पसंद की जगह ज्यादा अच्छा होगा कि आपके जो विचार हैं उसे प्रभावित कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा शब्द होगा। इसके आधार पर जब आप इस आंसर को देखेंगे, मुझे नहीं मालूम कि आपका उत्तर क्या होगा, लेकिन मेरा उत्तर तो यही है कि मैं तो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। शुरू में ही जब आपने पूछा कुछ और बताया कुछ जा रहा है तो प्रभावित होने का सवाल ही नहीं है, वहां थोड़ा सा मन खराब हो जाता है। और फिर आपने इतना लंबा पढ़ने के लिए उसको बाध्य भी कर दिया, वो तो उम्मीद कर रहा था कि 150 शब्द पढ़ के मुक्ति मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपको तो 450 शब्द पढ़ने पड़ेंगे, आप ये भी पढ़िए। आपको नहीं लगता है कि उत्तर लिखने की कितनी बड़ी कमजोरी है, कितनी बड़ी कमजोरी है। एक पैरा और सुन लीजिए, देखिए इस पैरा को मैच करके देखिए प्रश्न के साथ में। मुगलों के आगमन के साथ मूर्तिकला की कला को संरक्षण और आत्म अभिव्यक्ति के अवसरों की कमी के कारण गिरावट शुरू हुई। भारत में मुस्लिम शक्ति के प्रसार ने मूर्तिकला को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम कानून के अनुसार जीवित मानव की छवियों का निर्माण करना पापी और सर्वशक्तिमान लोगों के लिए और भी पापपूर्ण है, इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे देवी देवताओं, मनुष्यों या जानवरों की छवि को बनाने से रोकना अपना धार्मिक कर्तव्य माना। उन्होंने चित्रों और मूर्तिकला प्रतिनिधित्व के बड़े पैमाने पर विनाश का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप मध्यकाल के अधिकांश मूर्तिकला के अवशेष नष्ट हो गए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मूर्तिकला की कला को मध्यकाल में कट्टरपंथी मुसलमान शासकों के द्वारा अधिकतम नुकसान उठाना पड़ा। अब आप इस पैरा पर विचार कीजिए, कि मूर्तिकला को क्यों क्षति उठानी पड़ी, मूर्तिकला का क्या भविष्य रहा, भारत में मूर्तिकला किस तरीके से आगे बढ़ी, मध्यकाल में क्यों मूर्तिकला को क्षति हुई, मूर्तिकला का विकास क्यों नहीं हुआ, इस तरह की कोई भी बात इस प्रश्न में पूछी गई है? या अगर नहीं भी पूछी गई है तो क्या बताना जरूरी है? प्रकरांतर से भी क्या उसकी आवश्यकता आप महसूस करते हैं? देखिए होता क्या है कि जब हम प्रश्न को नहीं समझते ना, तब हम कुछ भी दाएं बाएं आए बाएं साएं जिसे कहते हैं ना, लिखते चले जाते हैं, उससे बात बनती नहीं है। यहां जो शब्द स्फीति है, हाँ, जैसे आप मुद्रा स्फीति शब्द जानते हैं ना, उसी तरह से यहां जो शब्द स्फीति है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि विचारों की मेड़ तैयार नहीं की गई। जैसे खेत होते हैं ना, तो खेत के चारों तरफ जब आप मेड़ लगा देते हैं तो वर्षा का जल उसमें रुक जाता है, और फिर आपके पौधों की सिंचाई होती रहती है लंबे समय तक। अगर वो मेड़ नहीं होगी तो क्या होगा, वो पानी बह जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। तो हमारे विचार भी तो यही होते हैं। अगर आप अपने विचारों को मेड़ बना करके रोकेंगे नहीं तो वो तो कहीं इधर उधर कहीं भी भटकते रहेंगे आवारों की तरह। और यहां आपको यही दिखाई दे रहा है कि जो मन में आ रहा है उत्तर लिखने वाले का, जो भी उस समय सूझ गया वो लिख दे रहा है, वो लिख दे रहा है, वो लिख दे रहा है, और सारी जिम्मेदारी वो आप पर डाल दे रहा है कि आप ढूंढ लीजिए क्या है। दोस्तों, ये उत्तर लेखन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आप इसमें जब प्राथमिकता ढूंढेंगे तो प्राथमिकता तो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब आप प्रश्न को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि लिखना क्या है, तो फिर आप प्राथमिकता का निर्धारण कैसे करेंगे? तो प्राथमिकता भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो सीधी सी बात है कि ये जो उत्तर है दोस्तों, कुल मिलाकर मेरी ओर से बिल्कुल निरर्थक उत्तर है। पूछा गया है राम, लिखा जा रहा है रहीम। पूछा गया है रहीम, लिखा जा रहा है राम। ये एक कहावत है, मुहावरा है। इसमें आप क्या मार्क्स देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपीएससी का एग्जामिनर इसमें शून्य से अधिक नंबर नहीं देगा। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि मेंस में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे चल करके हो सकता है हो जाए कि अगर आपको नहीं आ रहा है और आपने कुछ लिख दिया तो आप बेकार के एग्जामिनर का टाइम खराब कर रहे हैं, तो उसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन फिलहाल कम से कम उत्तर लेखन में इस तरह से तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, मेंस में जो निगेटिव मार्किंग के तरीके हैं वो दूसरे तरीके के हैं, वो आप जब निर्देशों में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप अगर कुछ निशान बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं तो मार्क्स काट लिए जाएंगे, इस तरह से निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। लेकिन अगर आपने गलत उत्तर लिखा है तो उस पर निगेटिव मार्किंग की उस तरह से व्यवस्था नहीं है जैसे कि आपके प्री एग्जामिनेशन में होता है। तो फ्रेंड, ये मेरा मूल्यांकन है और मुझे लगता है कि इतने विस्तार के साथ मैंने जो बातें की हैं, डेफिनेटली इसने अब आपके दिमाग में कुछ न कुछ तो विचार करने की एक उकसाहट, जिसे कहते हैं ना कि उकसा देना, कोंच देना, वह काम तो जरूर किया होगा। और यदि ऐसा हो गया है तो मान करके चलिए कि आप अब अच्छे उत्तर लिखने के लिए तैयार तो हो गए हैं, आपके जबीब तो तैयार हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।